अध्याय 14। दिया क्या जले जब जिया जल रहा। खंड 1। गंगो नित्य की अपेक्षा आज कुछ जल्दी ही उठ गई थी। उठने के बाद से ही वह अनमनी थी। वह समझ नहीं पा रही थी, पर उसे सब कुछ अधूरा अधूरा दिखाई पड़ रहा था। चारों ओर अतृप्ति उमान सी भरती जान पड़ रही थी और अभाव मचल मचल कर चिकोटी काटता सा मालूम पड़ता था। उठते ही उसने अपनी पालतू बिल्ली को एक चैला खींच कर मारा। कारण वह नित्य उसके निकलने के बाद कोठरी से बाहर निकला करती थी, पर आज वह उसके पहले ही बाहर निकल आई। उस दिन घर में उसने बुहारी नहीं लगाई, बल्कि झाड़ू उठाकर उसने सारा घर पीट डाला। उसका सारा आक्रोश अपने पति सूरत पर था, जिसे वह अपने सारे अभावों का मूल कारण समझती थी। वह चाहती थी कि सूरत उससे कुछ कहे, उसे अपना अभाव अभियोग उपस्थित करने का मौका मिले। सूरत भी सवेरे से ही निगाह दबाए सब कुछ भाप रहा था। देख रहा था कि दिशाएं निस्तब्ध हैं और गंगो का मुख बादल की तरह भारी है। वह डर रहा था कि अभी अभी वह कहीं बरस ना पड़े। उसने चुपचाप नित्य क्रिया समाप्त की, बाल सवारे, गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाला, पानी पिया और फिर एक अधजली बीड़ी सुलगा कर वह दबे पांव बाहर निकल जाने का प्रयत्न करने लगा। करीब करीब वह सफल हो चुका था, अर्थात एक पैर चौखट के उस पार हो चुका था, जूता भी पहन चुका था, दूसरा पैर भी उठ गया था। जैसा वज्रपात हुआ, उठा हुआ पैर जहाँ का तहाँ आ रहा। पैर रखने से बने हुए पहले निशान पर इस बार पैर वापस होकर इस प्रकार चारों खाने ठीक बैठा, जैसे समान कोण और भुजा वाले त्रिभुज एक दूसरे पर सरोतर बैठ जाते हैं। सिर सहसा घूम गया, आंखें सभय हो गईं, मुंह खुल गया, जैसे कह रहा हो, भाई तू भी तो खुल, या बंद बंद सा तो खल रहा है। कानों में कंपन हुआ, कंपन से ध्वनि हुई, हाँ तो दिवाली कल है कि परसों, कब है हमें नहीं मालूम, मिल से छुट्टी होती तो मालूम होता, तुम्हारे ऐसा निकम्मा आदमी तो त्रिलोक में न होगा। कब परब है कब त्योहार है इसका भी तुम्हें पता नहीं, पता चले तो कैसे। सबेरा हुआ, दौड़ते मिल पहुंचा, दिन भर कोयला झोंक कर दिया जले हाथ और मुंह में कारीक पोते घर लौटता हूँ। दिन भर का थका मादा लेटते ही नींद आ जाती है। हमको तो यह भी नहीं मालूम होता कि आज दिन कौन सा है। घर की परवाह हो तो मालूम हो, आके तुम्हें दिवाली याद कैसे आई। साल भर का त्योहार है और क्या। अच्छा तो पता लगा कर बताऊंगा। तुम क्या पता लगाओगे, मैं खुद पता लगा लूंगी। राम राम, दुनिया में ऐसे भी आदमी है। सूरत मूरत सा बना हुआ सारी पटकार हजम कर रहा था। गंगो शेरनी की तरह बरकाती हुई घर से बाहर निकली। सूरत अधजली बीड़ी से अधजला हृदय सुलगाता हुआ घर से बाहर निकल आया। रामू की माँ की आवाज से मोहल्ला गूंज उठा। गंगो अपनी पड़ोसी रामू की माँ को बुला रही थी। रामू की माँ भी अपने दरवाजे पर आई। गंगो ने पूछा, क्यों बहन, दिवाली तो कल ही है ना, हमको क्या मालूम बहन की दिवाली कब है और भैया दूज कब। ऐसा क्यों कहती हो, साल भर त्योहार है, मेरे यहाँ तो इस साल कोई त्योहार न मनाया जाएगा। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम, आसाम में भूकंप में हमारे जेठ मर गए, उसी गम में इस साल हम त्योहार नहीं मनाएंगे। गंगो निराश होकर उधर से लौटी। दूसरी ओर जाकर उसने अपनी दूसरी पड़ोसी को पुकारा, ललिता, अरे ओ ललिता, कहाँ है, क्या है गंगो। ललिता ने आकर पूछा, यही पूछना है कि दिवाली इस साल परसों पड़ेगी कि नरसों। दिवाली न परसों है न नरसों, कल ही है। कल ही है, गंगो के मुख पर आश्चर्य से सभी लक्षण स्पष्ट हो उठे। उसने पूछा, दिवाली के दिन तुमने क्या तैयारी की है, हम गरीबों के यहाँ त्योहार की तैयारी कैसी, यहाँ 12 महीने वही रुखी रोटी वही सूखा साग, त्योहार तो है अमीरों का, चमेली बुआ का, जो लल्हो छठ तक धूमधाम से मनाती है। ठीक ही है, भगवान ने 4 पैसे दिए हैं, वह क्यों ना धूमधाम करें। गंगो आंखों में प्रकाश आ गया, जैसे घने अंधकार में उसने आलोक रेखा देख ली हो। उसने चमेली बुआ के घर की राह ली। चमेली बुआ नौकर को बाजार भेजने के लिए वस्तुओं की लंबी सूची बना रही थी। उन्होंने गंगो को देखकर भी न देखा, तथापि वह उन्हीं के पास जा बैठी। गंगो अंतस्त्वा थी, इधर उसकी तबीयत उर्द से बड़े पर आ गई थी, पर वह अपनी यह इच्छा किससे और कैसे प्रकट करे। लोक दृष्टि के समक्ष अपने मन का आचरण उठाने में वह लजाती थी, कारण आवरण उठाने में लज्जा लगती ही है, चाहे वह दैहिक हो या मानसिक। यही कारण है कि अपने पति सूरज से भी खुलकर अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। वह चाहती थी कि स्वयं उसकी इच्छा भाप जाए, उसे पूरी कर दे। चमेली बुआ का काम समाप्त होने पर गंगो ने कहा, क्यों बुआ, कुछ मेरे लायक काम है। काम तो कुछ वैसा नहीं है, पर त्योहार का दिन है इसलिए काम की क्या कमी है, हो सके तो जरा तड़के चली आना, पीठी बीठी पीसनी है। गंगो दिन भर चमेली बुआ के हाँ जी तोड़ परिश्रम करती रही। रात के 8 बजे घर लौटी। सूरत मिल से लौट आया था। गंगो के आते ही उसने कहा, दिवाली कल ही है, तुमसे पहले ही मुझे मालूम हो गया है, बकवाद मत करो, हमें तड़के ही उठना है। खंड 2। अर्धनिशा की निर्वता को चीरता हुआ समीपवर्ती पुलिस थाने का घंटा बजने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गंगो तड़प कर उठ बैठी। उसने सूरत का कंधा झकझोर कर उसे उठा दिया और झल्लाती हुई बोली, मैंने तुमको सहेज दिया था कि हमें जल्दी उठा देना, 4 ही बजे जाना है। या लो 6 बज गया। सूरज ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, तुम तो बड़ी पागल हो, न सोती हो न सोने देती हो, अभी तो कुल 12 बजे हैं। 12 थाने का घंटा अभी बजता ही जा रहा था। गंगो को अपनी भूल मालूम हुई, वह लज्जित हो गई। पुनः लेट तो गई पर आंख फिर न लग सकी। उसने जागते हुए सुना, घंटे भर बाद 2 घंटे भर के व्यवधान के बाद 3 बजा। गंगो के लिए पल भर भारी होने लगा, बड़ी देर हो गई, 4 का घंटा नहीं बजा। गंगो ने समझा शायद तंद्रा के कारण 4 बजना वह नहीं सुन पाई। वह उठ पड़ी और सूरत को घर से होशियार रहने का आदेश देती हुई बाहर निकल पड़ी। खंड 3। कुल्ला दातुन तक किए बिना चमेली बुआ के यहाँ 10 बजे तक अथक परिश्रम करके गंगो घर लौटी। सूरत बाजार गया था, उसने जल्दी जल्दी स्नान आदि समाप्त किया और इस प्रतीक्षा में कि अब चमेली बुआ के यहाँ से उसे कोई भोजन के लिए बुलाने आवेगा, वह दरवाजे पर जा बैठी। 11 बजे 12 बजा, अब तक कोई नहीं आया। गंगो ने देखा कि रामू की माँ रामू को गोद में लिए और रामू रन्नो को उंगली पकड़ाए चमेली बुआ की ओर जा रही है। गंगो ने पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? चमेली बुआ के यहाँ से बुलावा है, वहीं जा रही हूँ। कब बुलावाया? कल ही शाम को। गंगो को धक्का लगा, रामू की माँ आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद 2-4 दूसरी पड़ोसियों के साथ ललिता भी चमेली बुआ के घर की ओर जाती दिखाई पड़ी। गंगो ने जानकर भी प्रश्न किया, कहाँ जा रही हो? चमेली बुआ के यहाँ से भोजन का बुलावा आया है ना? वहीं। अच्छा यह बात है, मैंने भी सोचा कि कहाँ जा रही हो। न्योता नहीं मिला तुमको क्या? ललिता ने पूछा। न्योता मिले भी तो मैं नहीं मानने वाली, मैं यहाँ किसी के टुकड़े की मोहताज हूँ क्या? तुम लोगों की तरह पेट होया है, तुम अमीर हो, अपने घर की हो। अरे तो लड़ती क्यों हो? मैं लड़ती हूँ कि तू दायन कहीं की। ललिता और उसकी साथी ने समझ न पाए कि गंगो सहसा इतनी नाराज क्यों हो गई। वो अपने रास्ते बढ़ गई। ताश होकर अपने गरीबों के भंडार घर में जाकर यह जानती हुई भी कि उसकी अभिलषित वस्तु उसे नहीं मिलेगी, गंगो ने हांडियां टटोलनी शुरू की, पर किसी भी हांडिया में उसे उर्द की दाल का एक दाना भी न मिला। वह अभाव के उस समुद्र से फैल गई जिसमें केवल चट्टानों से टकराकर बिखरने के लिए निराशा की लहरें उठती हैं, उठा करती हैं। इस प्रकार इस समय कंट्रोल की दुकान पर से विमद्र सूरत राशन लिए हुए घर आया। उसे देखते ही गंगो उसकी ओर लपकी, राशन की गठरी उसके हाथ से छीनकर जमीन पर पटकती और आंचल पसार कर रोती हुई उसने पूछा, बोलो मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं उर्द का बड़ा खाऊंगी? इसी समय मकान मालिक के पुत्र ललन ने कटोरे भर उर्द की दाल उसके फैले हुए आंचल में लटती। सूरत भौचक हो रहा, सारा दृश्य उसके लिए पहेली था।